एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
हाँ, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने 20वीं सदी के दर्शन पर बहुत गहरा असर डाला है, मार्टिन हाइडेगर की बीइंग एंड टाइम, यानी होना और समय।
नमस्कार।
हाँ,
ये किताब थोड़ी कह सकते हैं भारी भरकम मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर जो विचार हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और आज ये क्यों जरूरी है? देखिए, हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपनी भूमिकाओं मतलब रोल्स और गोल्स में इतने उलझ जाते हैं कि ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं कि आखिर हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है।
सही बात है।
ये किताब हमें उसी बुनियादी सवाल की तरफ वापस खींचती है।
बिल्कुल। तो आज की इस खास चर्चा का मकसद यही है कि इस थोड़ी मुश्किल लगने वाली किताब के सबसे जरूरी विचारों को आसान भाषा में समझें, है ना?
हाँ, कोशिश यही रहेगी।
हम देखेंगे कि हाइडेगर अस्तित्व, समय और जिसे वो प्रामाणिक जीवन कहते हैं उसे कैसे देखते हैं, और ये सब हमारी अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों को तय करने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वैचारिक खोज।
तो सबसे पहले शायद लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। मार्टिन हाइडेगर 1889 से 1976 तक जर्मनी के एक बहुत प्रभावशाली दार्शनिक थे।
हाँ,
उनका नाम अक्सर अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म और फिनोमिनोलॉजी जैसी विचारधाराओं से जोड़ा जाता है।
हाँ, और उनकी शुरुआत भी दिलचस्प थी। मैंने पढ़ा था कि पहले धर्मशास्त्र पढ़ा, फिर दर्शन की तरफ मुड़े।
जी हाँ, और वहां वो फिनोमिनोलॉजी के जो संस्थापक थे एडमंड हुसरल, उनके शिष्य बने।
अच्छा।
लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने गुरु से हटकर एक बिल्कुल बिल्कुल नया रास्ता चुना।
क्या खासियत थी उनकी?
देखिए, खासियत ये थी कि उन्हें पश्चिमी दर्शन के इतिहास की गहरी समझ थी, बहुत गहराई से जानते थे वो। पर उनका मानना था कि सदियों से, खासकर प्लेटो के बाद से, दर्शन अपने सबसे बुनियादी सवाल को भूल गया है।
कौन सा सवाल?
यही कि होने का अर्थ क्या है, बीइंग का मतलब क्या है। वो उस सवाल को फिर से जिंदा करना चाहते थे जैसे पुरानी यूनानी विचारक सोचते थे।
अच्छा।
उनका मानना था कि ये जो आधुनिक दुनिया है ना, इसने हमें हमारी असलियत से, हमारी जो भूमिका है उससे कहीं ना कहीं भटका दिया है।
और उनका तरीका भी सुनने में आया है काफी अलग था। वो हवा हवाई बातों से शुरू नहीं करते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे ठोस रोजमर्रा के अनुभवों से दर्शन शुरू करना चाहते थे, जो हम जीते हैं, महसूस करते हैं वहां से। और बीइंग एंड टाइम जो 1927 में छपी, वो इसी कोशिश का नतीजा थी, और इसी किताब ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया।
हाँ, पर यहाँ ये बताना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि बाद में नाजी पार्टी के साथ उनके जुड़ाव पर बहुत विवाद हुआ।
बिल्कुल, ये एक अहम और दुखद पहलू है,
और ये उनकी विरासत पर एक सवालिया निशान तो लगाता ही है। फिर भी इस किताब का जो दार्शनिक महत्व है, जो असर है, वो आज तक बना हुआ है।
बिल्कुल, विवाद अपनी जगह, लेकिन किताब के विचार अपनी जगह।
तो आखिर ये किताब बीइंग एंड टाइम किस बारे में है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है?
देखिए, इसका सीधा सा लक्ष्य है होने के उस भूले हुए सवाल को फिर से जगाना। हाइडेगर कहते हैं कि हमने होना को इतना सामान्य मान लिया है, इतना ऑब्वियस, जैसे हवा।
हवा कैसे?
जैसे हम सांस लेते हैं पर हवा के बारे में सोचते नहीं, है ना, बस लेते रहते हैं। वैसे ही हम हैं पर अपने होने पर सोचते नहीं, ये बस मान लिया गया है।
अच्छा, समझा।
और इस होने को समझने के लिए हाइडेगर एक खास तरह के होने पर ध्यान देते हैं, वो जिसका होना खुद उसके लिए एक सवाल है,
यानी हम, इंसान।
बिल्कुल, हम। इसके लिए वो एक जर्मन शब्द इस्तेमाल करते हैं, डाजाइन।
डाजाइन, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मोटा मोटा मतलब है वहां होना या बस अस्तित्व। तो ये किताब असल में डाजाइन यानी हमारे अस्तित्व की बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश है,
ताकि
होने के गहरे अर्थ तक पहुंचा जा सके। ये समझने की कोशिश है कि हमारी असल भूमिका क्या है, सिर्फ वो नहीं जो समाज ने हमें दे दी है। हाइडेगर पुरानी परिभाषाओं को एक तरफ रख देते हैं। जैसे वो कहते थे ना, मनुष्य एक सोचने वाला जानवर है।
हाँ, रैशनल एनिमल।
हाँ, वो इन सबको किनारे कर देते हैं। वो कहते हैं कि डाजाइन का सबसे बुनियादी रूप है विश्व में होना, बीइंग इन द वर्ल्ड।
विश्व में होना, ये सुनने में तो सीधा लगता है, हम सब दुनिया में ही तो है।
हाँ, पर ये उतना सीधा नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे कोई मेज कमरे में रखी है, ये वैसा वाला मेज नहीं है।
तो फिर कैसा है?
नहीं, ये दुनिया के साथ हमारा एक अंदरूनी गहरा और व्यवहारिक रिश्ता है। हमारा अस्तित्व ही दुनिया से जुड़ा है। हम दुनिया में जीते हैं, दुनिया के साथ जीते हैं, हमारी भूमिकाएं भी तो इसी दुनिया के संदर्भ में ही होती है ना।
हाँ, ये बात तो है।
और ये किताब हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन को गौर से देखने को कहती है, जिससे वो औसत रोजमर्रापन, एवरेज एवरीडेनेस कहते हैं।
औसत रोजमर्रापन मतलब?
मतलब हमारी आम जिंदगी, हम कैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जैसे हथौड़ा चलाना, कैसे दूसरों से बातें करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे गपशप में शामिल हो जाते हैं।
हाँ, होता है।
हमारे मूड कैसे हमें दुनिया दिखाते हैं, और सबसे अहम, कैसे हम अक्सर भीड़ के पीछे चलने लगते हैं।
भीड़ के पीछे?
हाँ, जिसे हाइडेगर वे द दे कहते हैं।
वे कौन? वे,
वे यानी लोग क्या कहेंगे, आजकल क्या चल रहा है, सब ऐसा ही करते हैं, वो अनाम भीड़।
अच्छा, हाँ हाँ, समझा।
इसी भीड़ से निकलकर अपने असली अस्तित्व, अपनी प्रामाणिक भूमिका और लक्ष्यों को खोजने की तरफ हाइडेगर इशारा करते हैं।
दिलचस्प। तो चलिए अब कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा था ये किताब अधूरी रह गई।
हाँ, तकनीकी रूप से अधूरी है। हाइडेगर इसका दूसरा भाग कभी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जितना हिस्सा है वही अपने आप में विचारों की खान है।
तो शुरुआत कहाँ से करें?
शुरुआत करते हैं विश्व में होना से, जैसा हमने अभी जिक्र किया। ये कोई अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक पूरी इकाई है। हमारा दुनिया में होना मतलब दुनिया के कामों में लगे रहना है। हम पहले पैदा होकर बाद में दुनिया से नहीं जुड़ते, हमारा होना ही दुनिया में शामिल होना है।
ठीक है।
और हम दुनिया में चीजों से कैसे मिलते हैं, यहाँ हाइडेगर दो मुख्य तरीके बताते हैं।
दो तरीके, कौन से?
पहला है इस्तेमाल के लिए तैयार, रेडी टू हैंड, जुहानदन हाइट।
जुहानदन हाइट?
हाँ, सोचिए जब आप गाड़ी चला रही हैं, आप स्टीयरिंग व्हील, गियर, ब्रेक के बारे में अलग से सोचती नहीं है, है ना?
नहीं, वो तो बस चलता रहता है।
हाँ, वो सब आपके ड्राइविंग के काम का हिस्सा हैं, इस्तेमाल के लिए तैयार। हथौड़ा कील ठोकने के लिए है, हम बिना सोचे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा चीजों से जुड़ने का सबसे पहला और स्वाभाविक तरीका है, जब हम अपनी कोई भूमिका निभा रहे होते हैं।
बिल्कुल।
और दूसरा तरीका?
दूसरा तरीका है सिर्फ मौजूद,
प्रेजेंटेड हैंड,
वुहानदन हाइट।
हाँ, ये तब होता है जब कोई चीज काम करना बंद कर दे या टूट जाए। मान लीजिए वही हथौड़ा टूट गया। अब आप उसे सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि उसे देख रही हैं। अच्छा, इसका वजन कितना है, किस लकड़ी का बना है, टूटा कहाँ से है, आप उसके गुणों पर ध्यान दे रही हैं।
हाँ, सही बात है, फिर वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है।
बिल्कुल। हाइडेगर कहते हैं कि विज्ञान और पुराना दर्शन अक्सर चीजों को इसी सिर्फ मौजूद नजरिए से देखता है, जैसे वो कोई प्रयोगशाला में रखी चीज हो।
अच्छा।
और इस चक्कर में चीजों के साथ हमारा जो असली रोजमर्रा का व्यावहारिक रिश्ता है वो कहीं पीछे छूट जाता है।
समझा। अब लोगों की बात करते हैं। आपने कहा था दूसरों के साथ, बीइंग विथ, मिथ साइन।
जी हाँ, हमारा अस्तित्व अकेले का नहीं है, हम हमेशा दूसरों के साथ होते हैं। लेकिन यही एक खतरा भी है, वे दे
दस मैन।
हाँ, वो वे वाला कॉन्सेप्ट।
ये वे कौन है?
ये कोई खास इंसान नहीं, बल्कि समाज की भीड़ है, वो गुमनाम आवाज जो कहती है ऐसा ही होता है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
ये बहुत दिलचस्प है। आज के जमाने में देखें तो सोशल मीडिया पर ये वे बहुत ज्यादा हावी लगते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने।
क्या ट्रेंड कर रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, हमें क्या पहनना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, यहाँ तक कि हमें कौन से लक्ष्य मतलब गोल्स चुनने चाहिए, ये सब जैसे वे ही तय कर रहे हैं।
एकदम। हाइडेगर इसी को अप्रामाणिकता, इनऑथेंटिसिटी कहते हैं, जब हम अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भीड़ के पीछे चलने लगते हैं।
तो मतलब हम वो भूमिका निभाने लगते हैं जो समाज ने तय की है, ना कि वो जो हमारे अंदर से आती है।
बिल्कुल। और फिर हाइडेगर मनोदशा, अट्यूनमेंट, बेफिंडलीकैट और समझ, अंडरस्टैंडिंग, वश्टीन की बात करते हैं।
मनोदशा और समझ?
हाँ, हम हमेशा किसी न किसी मूड में होते हैं, कभी चिंता, कभी खुशी, कभी बोरियत, है ना?
बिल्कुल।
ये मूड सिर्फ हमारे अंदर की फीलिंग नहीं है, ये दुनिया को देखने का हमारा चश्मा है। जब हम खुश होते हैं दुनिया अलग दिखती है, उदासी में सब फीका लगता है।
सही है। और समझ?
समझ का मतलब सिर्फ जानकारी होना नहीं है। हाइडेगर के लिए समझ का मतलब है अपनी संभावनाओं को देख पाना, भविष्य में खुद को प्रोजेक्ट कर पाना।
मतलब हम क्या बन सकते हैं?
हाँ, हम क्या बन सकते हैं, क्या लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, यही हमारी असली समझ है। हमारी भूमिका कोई फिक्स चीज नहीं है, वो हमारी संभावनाओं में छिपी है।
अच्छा।
इन सबको मिलाकर हाइडेगर हमारे अस्तित्व की बुनियादी संरचना को देखभाल, केयर, सॉर्जे कहते हैं।
देखभाल जैसे चिंता करना?
नहीं, ये वो चिंता वाली देखभाल नहीं है। ये हमारे होने का पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इसमें तीन पहलू एक साथ जुड़े हैं।
तीन पहलू कौन से?
पहला है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, यानी संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ना, भविष्य, हमारे लक्ष्य, हमारी उम्मीदें।
ठीक है।
दूसरा तथ्यात्मकता, फैक्टिसिटी, मतलब दुनिया में फेंक दिए जाना, अतीत, हमारी पैदाइश, हमारा माहौल, वो हालात जो हमने नहीं चुने।
थ्रोननेस।
हाँ। और तीसरा पतन, फॉलननेस, रोजमर्रा की दुनिया और वे की भीड़ में खो जाना, वर्तमान।
अस्तित्व, तथ्यात्मकता, पतन, ये तीनों मिलकर देखभाल है।
जी।
और यहीं पर हाइडेगर एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन गहरा विचार लाते हैं, मृत्यु की ओर होना, बीइंग टुवर्ड्स डेथ।
मृत्यु की ओर होना, ये तो बड़ा निराशाजनक सा लगता है।
हाँ, पहली बार में ये थोड़ा डरावना या निराशाजनक लग सकता है, पर सोचिए, वो कहते हैं कि अपने अस्तित्व को, अपनी भूमिका को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपनी मौत की सच्चाई का सामना करना होगा।
सामना करना होगा, पर कैसे
और क्यों?
हाइडेगर का मतलब क्या है? वो कहते हैं मौत हमारी सबसे अपनी संभावना है, कोई और हमारे लिए मर नहीं सकता।
हाँ, ये तो है।
ये गैर संबंधात्मक है, ये हमें सबसे अकेला कर देती है। ये निश्चित है, होगी जरूर, और अनिश्चित है, कब होगी पता नहीं।
ठीक है, ये सब तो समझ आता है, पर इसका सकारात्मक पहलू क्या है?
है। हाइडेगर कहते हैं कि जब हम अपनी मौत की इस सच्चाई को ईमानदारी से, प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं, तो ये हमें वे की फालतू बातों और सामाजिक दबावों से आजाद कर सकती है।
कैसे?
ये हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है, लिमिटेड है। तब हम ये सवाल पूछने पर मजबूर होते हैं कि इस सीमित समय में मेरे लिए वाकई क्या जरूरी है, मेरी असली भूमिका क्या है, मेरे असली लक्ष्य क्या है।
ये तो एक अलग ही नजरिया है।
बिल्कुल, इसी से जुड़ा है अंतरात्मा की पुकार और संकल्प एंड श्लॉसिंग हाइट का विचार।
अंतरात्मा की पुकार?
हाँ, हाइडेगर के नजदीक अंतरात्मा की आवाज हमें भीड़ की दुनिया से खींचकर वापस अपनी जिम्मेदारी और अपनी अनूठी संभावनाओं की ओर बुलाती है।
और संकल्प?
और इसका प्रामाणिक जवाब है संकल्प, यानी अपनी स्थिति जो फैक्टिसिटी है, भेगा जाना, को स्वीकार करते हुए पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ अपने रास्ते, अपनी भूमिका और अपने लक्ष्य चुनना और उन पर अमल करना।
मतलब भागना नहीं, बल्कि स्वीकार करके चुनना।
हाँ, और ये सब मिलकर हमें सामयिकता की समझ तक ले जाते हैं।
सामयिकता मतलब समय।
हाँ, पर घड़ी वाला समय नहीं। हाइडेगर के लिए समय घड़ी की टिक टिक वाली सीधी रेखा नहीं है, बल्कि हमारा अस्तित्व ही समय है।
हमारा अस्तित्व ही समय है, ये कैसे?
भविष्य, हमारी संभावनाएं, हमारे लक्ष्य, अतीत, हमारी जड़ें, हमारी सीमाएं, हमारा फेंका जाना, और वर्तमान, हमारे चुनाव, हमारे काम, हमारा रोजमर्रापन, ये तीनों एक साथ हमारे होने को बनाते हैं। एक प्रामाणिक जीवन इसी मिले जुले एकीकृत समय में जिया जाता है, ना कि बस एक के बाद एक पल में।
वाह, ये वाकई बहुत गहरी बातें हैं। मतलब समय बाहर नहीं, हमारे अंदर है।
एक तरह से हाँ।
अगर हम इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य संदेश निकालने हो संक्षेप में, तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए सबसे पहला और जरूरी संदेश है, होने के सवाल को मत भूलो। अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों में इतने मत खो जाओ कि ये पूछना ही बंद कर दो कि मेरे अस्तित्व का मतलब क्या है। दूसरा, इंसान चीज नहीं, संभावना है। हम कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है जिसका एक तयशुदा काम या रोल हो। हम हमेशा बनने की प्रक्रिया में हैं। हमारी असली पहचान हमारी संभावनाओं में है, उन भूमिकाओं में है जो हम चुन सकते हैं, उन लक्ष्यों में है जिन्हें हम पाना चाहते हैं।
और तीसरा, जो मुझे लगता है आज बहुत बहुत प्रासंगिक है, असली बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं।
बिल्कुल।
वे यानी समाज, भीड़, लोग क्या कहेंगे, इनके हिसाब से जीना आसान है, पर हाइडेगर कहते हैं ये अप्रामाणिक है।
हाँ।
प्रामाणिकता अपनी मौत की सच्चाई, अपनी आज़ादी और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने में है। सोचिए, हमारे समाज में चाहे करियर हो, शादी हो या जीने का तरीका, कितने फैसले हम खुद लेते हैं और कितने वे के दबाव में।
सही सवाल है।
अपनी भूमिका खुद तय करना ज्यादा मुश्किल है, पर शायद ज्यादा सार्थक भी।
निश्चित रूप से। चौथा संदेश, हम दुनिया में हैं, दुनिया से अलग नहीं। हमारा पहला वास्ता दुनिया से सोचने का नहीं, बल्कि उसमें जीने, काम करने, चीजों को इस्तेमाल करने का है। हमारा अस्तित्व ही दुनिया में रचा बसा है।
और पांचवा,
समय सिर्फ गुजरता नहीं, हम समय हैं। हमारा अस्तित्व ही भविष्य की संभावनाओं, लक्ष्यों, अतीत की दी हुई स्थितियों, जड़ों और वर्तमान के चुनाव, भूमिका का संगम है। इस समझ से हम अपने समय का शायद बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाइडेगर की भाषा भले ही मुश्किल हो, पर उनके कुछ विचार सीधे दिल पे लगते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं।
हाँ, जैसे एक ये कि डाजाइन यानी इंसान वो है जिसके लिए उसका अपना होना ही एक मुद्दा है। मतलब हम ही वो जीव हैं जो अपने वजूद पर, अपनी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। यही हमें खास बनाता है।
सही। और ये वाले भी, विश्व में होना का मैं अंदर होने जैसा नहीं, बल्कि वहां रहने, उससे परिचित होने, उसमें शामिल होने जैसा है। ये बताता है कि दुनिया से हमारा रिश्ता कितना गहरा और बुनियादी है।
एक और जो आज के दौर में बहुत सटीक लगती है, वे ही तय करते हैं कि मूड कैसा होगा और कोई क्या और कैसे देखेगा। इसी छुपे हुए तरीके से वो अपनी असली तानाशाही चलाते हैं।
हाँ, ये सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी सच लगता है।
ये दिखाता है कि कैसे भीड़ का दबाव बिना किसी जोर जबरदस्ती के हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि हमारे लक्ष्य तक तय कर देता है।
बिल्कुल। और मौत वाली बात, मृत्यु डाजाइन की वो संभावना है जो बाकी सारी संभावनाओं को असंभव बना देती है।
ये सुनने में भले ही थोड़ी नेगेटिव लगे,
पर इसका मतलब ये है कि मौत हमें याद दिलाती है कि अवसर सीमित हैं। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं, अपनी असली भूमिकाओं और लक्ष्यों को तय करने में मदद करती है। ये एक तरह की अर्जेंसी लाती है।
सही। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? कोई व्यावहारिक तरीका?
देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक दबाव को पहचानना और उसका सामना करना। अगली बार जब आप कोई फैसला लें, करियर का, खरीदारी का या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने का, तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये सच में मेरी मर्जी है, मेरा लक्ष्य है, या मैं वे यानी लोगों के हिसाब से चल रहा हूँ?
ये आत्मचिंतन जरूरी है।
ये जागरूकता हमें अपनी मर्जी से अपनी भूमिका चुनने की हिम्मत दे सकती है।
और अपनी सीमितता से ताकत लेना, ये जानना कि हमारा समय सीमित है, मृत्यु की ओर होना शायद हमें टालम टोल करने से रोके।
बिल्कुल। ये हमें पूछने पर मजबूर करता है कि मेरे लिए कौन से लक्ष्य, कौन सी भूमिकाएं वाकई मायने रखती हैं। शायद हम छोटी मोटी फालतू बातों में उलझना कम कर दें।
सही है। और जिम्मेदारी लेना सीखना।
हाँ, ये बहुत अहम है। अपनी परिस्थितियों के लिए सिर्फ दूसरों को या हालात को दोष देने के बजाय अपनी स्थिति फेंके जाने को स्वीकार करना और उसमें रहते हुए हिम्मत से अपने चुनाव करना, अपनी भूमिका तय करना, ये हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाता है, पैसेंजर नहीं।
और समय को नए नजरिए से देखना, जैसा आपने कहा था।
जी, समय को सिर्फ बीतते हुए मिनटों और घंटों की तरह नहीं, बल्कि भविष्य मेरे लक्ष्य, मेरी संभावनाएं, अतीत मेरी सीख, मेरी सीमाएं, और वर्तमान मेरे काम, मेरे चुनाव के एक मिलेजुले रूप में देखना। इससे शायद हम अपने आज को ज्यादा सार्थक बना पाएं।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए, अपनी भूमिका और लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए, हमें पहले अपने होने के तरीके को समझना होगा। हम कोई मशीन नहीं है जिसका एक फिक्स्ड फंक्शन या रोल हो। हम संभावनाओं से भरे हैं और हमारा समय सीमित है।
हाँ। और मेरे लिए ये बात खास रही कि कैसे सामाजिक दबाव वे हमारी प्रामाणिक जिंदगी यानी अपनी सच्ची भूमिका निभाने की राह में शायद सबसे बड़ा रोड़ा है।
बिल्कुल।
और ये कि अपनी मौत की सच्चाई से डरने की बजाय उसे हम सार्थकता और सही लक्ष्य तय करने का जरिया बना सकते हैं। असली जिंदगी जीने का मतलब शायद यही है, अपनी हकीकत को जानते हुए होशपूर्वक अपनी राह, अपनी भूमिका चुनना।
बीइंग एंड टाइम यकीनन एक मुश्किल किताब है, पढ़ना आसान नहीं है।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं।
पर ये हमें इंसान होने के मतलब पर, अपनी भूमिका और लक्ष्यों पर बहुत बुनियादी सवाल पूछने के लिए मजबूत औजार देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो वाकई हमारी अपनी है या हम बस वे के इशारों पर चल रहे हैं।
बहुत गहरा सवाल है ये सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।